मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार दोस्तों। आज के मुख्य विषय के रूप में मैं आप सबसे क्वाड की जो पहली बैठक हुई है उसके बारे में बातें करूंगा। लेकिन पहले आइए कुछ दूसरी छोटी छोटी एक दो घटनाओं को देख लेते हैं। केवल दो बातें। पहली बात विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। आप देख रहे हैं कि कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और उनकी उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। बस मेरा छोटा सा अनुरोध है कि विधानसभा चुनाव की आप इस प्रक्रिया को देखें। इस प्रक्रिया को देखने की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके तीन बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से हैं। तीन। एक तो हिस्सा हमारे संविधान का है कि जिस संविधान के अंतर्गत ये चुनाव कराए जा रहे हैं, राइट, संवैधानिक प्रोविजन, संविधान में बकायदे उल्लेख है। दूसरा हिस्सा है कि जो संविधान के तहत जो चुनाव कराए जाने हैं उसका जो दायित्व दिया गया है वो चुनाव आयोग को दिया गया है, इलेक्शन कमीशन को, है ना, और उसे स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तीसरा, और जब इलेक्शन कमीशन की बात मैं कह रहा हूं तो इसमें आप प्रशासन को भी ले लीजिए, प्रशासन भी, क्योंकि अभी जो जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां के प्रशासन पर, खासकर ऐसे समय पर, जो हमारा चुनाव आयोग है उसका नियंत्रण स्थापित हो जाता है। आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि किस तरीके से चुनाव आयोग बकायदे ये कहता है कि नहीं, ये डायरेक्टर जनरल पुलिस को हटा दिया जाना चाहिए और यहां पर ये लाया जाए, तो फिर ये नहीं कि राज्य उस पर विचार करेगा, नॉट एट ऑल। आदेश मिलते ही उन्हें वहां से हटा दिया जाता है और नए लोगों की नियुक्ति कर दी जाती है। यहां से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हटा दिए जाएं, इसको पोस्ट किया जाए, ये नहीं कि फिर आप अपने मन से पोस्ट कीजिए। चुनाव आयोग बताता है कि आप इसकी नियुक्ति कीजिए, यहां के एसपी को हटा दीजिए, यहां के इस अधिकारी को हटा दीजिए, यहां इसको भेजिए। सारे इस तरह के जो निर्णय हैं वो चुनाव आयोग लेता है ताकि जो चुनाव हैं वो तटस्थता पूर्वक हो सकें, पूर्वाग्रहों से मुक्त हो सकें, स्वतंत्र और निष्पक्ष हो सकें। और याद रखिए कि इस समय जो पूरी मशीनरी होती है जो स्टेट गवर्नमेंट की, वह चुनाव आयोग के नियंत्रण में होती है। स्टेट में भी अपने जो चुनाव अधिकारी होते हैं वो चुनाव आयोग के अंडर में काम कर रहे होते हैं। तो ये इसका दूसरा पक्ष है। और जो तीसरा पक्ष है वो राजनीति का पक्ष है। राजनीति क्या, यानी कि जो राजनीतिक दल हैं वो किस तरीके से चुनाव कराते हैं, चुनाव प्रचार कैसे करते हैं, किस किस तरह की बातें होती हैं, दूसरों का की आलोचना किस तरीके से करते हैं, टिकट किस तरीके से दे रहे होते हैं, ये जानना आपको इसलिए बहुत जरूरी है कि तभी आप इंडियन पॉलिटी को समझ पाएंगे। देखिए, पॉलिटिक्स को समझना, पॉलिटी को समझना, कॉन्स्टिट्यूशन को समझना थोड़ा 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 अलग अलग होता है, ये बिल्कुल एक ही नहीं है। तो मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा इस विषय पर ध्यान दें, और जब इससे संबंधित आप कोई कुछ पढ़ रहे हो, न्यूज आइटम या आर्टिकल्स, तो इस एंगल से पढ़िए। बस इतना ही आपके काम के, किसको कितने किस पार्टी ने टिकट दी और क्या क्या हो रहा है क्या नहीं, वो आपके ज्यादा काम की नहीं है। लेकिन बेहतर होगा कि यदि आप इस तरीके से इसे देखेंगे तो जो संविधान है और जो पॉलिटी है उस पर आपकी थोड़ी सी अच्छी पकड़ बन जाएगी। दोस्तों, आज मैं आपको टाइम्स ऑफ इंडिया का एक एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, इसे आप लोग देखिएगा। इस एडिटोरियल कमेंट में जो प्रश्न उठाया गया है वो ये है कि आप लोगों को शायद जानकारी है या नहीं है, मुझे नहीं मालूम, कि सुप्रीम कोर्ट में अभी एक पीआईएल यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका जिसे हम हिंदी में कहते हैं, वो दायर की गई है। उसमें ये कहा गया, हमारे यहाँ एक कानून बनाया गया, संसद ने एक कानून बनाया था जिसका नाम था प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन इन ब्रैकेट एक्ट, ये है वैलिडिटी ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्ड, हमारे यहाँ जितने भी उपासना स्थल हैं उन उपासना स्थलों से संबंधित एक कानून बनाया गया था 1991 में संसद के द्वारा। इसमें यह व्यवस्था की गई थी कि आजादी के दिन यानी कि 15 अगस्त 1947 के दिन हमारे जो उपासना स्थल है यानी कि पूजा केंद्र है, पूजा के केंद्र हैं, वो जिस स्थिति में है, जिन भी धर्म के पूजा के केंद्र हैं उन्हें उसकी मान्यता दी जाती है और वो ज्यों का त्यों वो स्थल बने रहेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई धार्मिक पूजा हिंदू का धर्म का केंद्र है तो हिंदू धर्म का केंद्र उपासना स्थल बना रहेगा, कहीं कोई मस्जिद है तो मस्जिद बनी रहेगी, कहीं गुरुद्वारा है तो गुरुद्वारा, गिरजाघर है तो गिरजाघर वो बना रहेगा। और उसके लिए जो डेट फिक्स की गई थी वो था 15 अगस्त 1947, ये कानून बना था 1991 में। और इसी कानून का उपयोग करते हुए जो बाबरी मस्जिद और अयोध्या राम मंदिर वगैरह के जो मामले चल रहे थे ना, उसके जो उसका जो निर्णय हुआ है उसमें भी इसे कोट किया गया है। तो ये चलता रहा। अब एक जो जनहित याचिका जो दायर की गई है, आपको बस दिमाग में ये बात रखने कि उसमें इस एक्ट को चैलेंज किया गया है, और उसमें ये कहा गया है कि ये जो एक्ट है उसमें जो इंडिपेंडेंस डे का जो कट ऑफ रखा गया ना 15 अगस्त 1947, ये जो तारीख दी गई है ये एक तरह से विवेकहीन है, यानी कि मनमानी तारीख दी गई है, अतार्किक है, इरेशनल है, और साथ ही साथ रिट्रोस्पेक्टिव है, यानी कि अतीत में जाकर के बात करती है, तो ये सही नहीं है। ये PIL सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर ली है, और अब देखिए कि इस पर क्या निर्णय आता है। ये बात आपके ध्यान में रहनी चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको लेकर के अपना कमेंट दिया है, इसे आप लोग पढ़ेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा है कि इसके बारे में, चूंकि बाकायदे पार्लियामेंट ने इसे पारित किया है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको आधार बना करके अपना निर्णय दे भी दिया है, तो इस पर विचार करने का कोई ज्यादा बड़ा कारण नहीं मिलता, क्योंकि अगर हम बहुत पीछे चले जाएंगे तो फिर तो बहुत से ऐसे स्थल होंगे जिनके बारे में विवाद चलेंगे और फिर उन पर विचार होगा, और एक तरीके से उन्होंने कहा कि पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, उसका फिर कोई हल नहीं होगा, अंतहीन समस्या पैदा हो जाएगी। और चूंकि हमने संविधान स्वीकार किया है, अब हमारा संविधान जब बना उसमें 15 अगस्त 1947 बहुत महत्वपूर्ण डेट है हमारी आज़ादी का, तो ठीक है उस डेट को फिक्स मान लिया गया है, तो कोई ना कोई डेट तो आपको फिक्स करनी ही पड़ेगी, और वो हमने किया है क्योंकि संविधान सभा में ही फिर धार्मिक स्वतंत्रता, समानता, इन सब की बात कही गई है। तो इसे आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, तो इससे आपको तथ्य मिलेंगे, और चूंकि सीधे सीधे आपके मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ सवाल है, तो जो उसका अपडेट होता है, जो लेटेस्ट जानकारी होती है, वो आपके पास होनी ही चाहिए। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं क्वाड के ऊपर। क्वाड आप लोग जानते हैं, इसे आप अगर हिंदी में अनुदित करना चाहें तो कांड्रम, या इसे आप चतुर्भुज कह सकते हैं। ये एक संगठन है और इस संगठन की चार भुजाएं हैं। चार भुजाएं का मतलब है चार देश इसके सदस्य हैं, और जो चारों देश हैं वो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। देखिए, एक तो अमेरिका है, आपको मानना पड़ेगा कि अमेरिका अपने आप में मायने रखता है। इसके बाद दोस्तों जो दूसरा देश है वह भी कम मायने नहीं रखता, भारत, हम भी उसमें शामिल हैं। इसके बाद जो तीसरा देश है वो जापान है, अपने आप में मायने रखता है। और चौथा देश है ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये चार देश इसके सदस्य हैं। अब आप देखें कि अमेरिका किस महाद्वीप में है, वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, राइट। इधर फिर आप जापान और भारत को देखिए तो ये दोनों एशिया में है, लेकिन जापान फॉरेस्ट में चला आता है, सुदूर पूर्व एशिया में चला जाता है, मतलब बिल्कुल ऊपर की तरफ, और भारत इस तरफ साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में आ जाता है। और इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, वो अलग महाद्वीप में है। ये चार देश, तो इनकी लोकेशन देखिए आप, मतलब ठीक है चार ही देश, लेकिन अगर आप जियोपॉलिटिकल दृष्टि से देखेंगे तो, जियो दृष्टि से देखिए तो ये चार अलग अलग दिशाओं में स्थित हैं, और पॉलिटिकल दृष्टि से देखिए तो पावरफुल भी हैं ये चार देश। काफी समय से ये संगठन बना हुआ है, लेकिन इनकी जो कार्यवाही थी, जो गतिविधियां थी, वो बहुत ज्यादा नहीं थी। मालाबार नौसेना अभ्यास आपने सुना होगा जो हमारे बंगाल की खाड़ी में होती रहती थी, तो अब जाकर के चारों देश इस तरह का अभ्यास कर लेते थे, बात खत्म हो गई, तो ये बहुत अधिक ये चल नहीं पा रही थी। और सच पूछे तो जब अमेरिका में ट्रंप आए तो हालांकि चीन के साथ उनका सीधे सीधे विरोध था, लेकिन उन्होंने इसे बहुत ज्यादा तरजीह नहीं दी, लेकिन जैसे ही बाइडेन आए हैं इन्होंने अब इस संगठन को तरजीह देना शुरू कर दिया है। इस संगठन के केंद्र में क्या है, देखिए अभी जो पहली बैठक हुई है, उस पहली बैठक में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात कही गई वो ये कि अभी तक जैसा कि मैंने कहा कि मालाबार एक्सरसाइज हो रही, नेवल एक्सरसाइज हो रही है, लेकिन अब इसके कार्य क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है और वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो कार्य क्षेत्र को बढ़ाया गया है उसमें भारत की बहुत बड़ी भूमिका है, भारत को बहुत प्रधानता दी गई है। इसीलिए जब यह वर्चुअल बैठक हो रही थी, पहली बैठक हुई है, जब वर्चुअल बैठक हो रही थी तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, अगर आप चाहें तो इन्हें नोट भी कर लें, क्योंकि जब हम आंसर में इस तरह के कोट डाल देते हैं तो एग्जामिनर थ्रिल्ड हो जाता है कि अरे वाह, हमारे प्रधानमंत्री जी जिन्हें कहा स्क्वाड को फोर्स ऑफ ग्लोबल गुड्स, सोच करके देखिए, यह विश्व कल्याण की ताकत है, फोर्स ऑफ ग्लोबल। और फिर उन्होंने कहा इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक, यानी कि जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है, इस पूरे के पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो स्थिरता होनी चाहिए उसके सबसे मुख्य स्तंभ उसका सबसे मुख्य स्तंभ है क्वाड, राइट। तो अब आप देखिए कि अगर वो स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं हिंद प्रशांत क्षेत्र में, तो कोई ना कोई तो ऐसी फोर्स होगी जो इसे अस्थिर कर रही है, तो वो अस्थिर करने वाले फोर्स कौन सी है? मैं भारत के संदर्भ में बात कर रहा हूं। तो आप जानते हैं क्वाड के बारे में, वो है चाइना। क्योंकि जो चाइना है, एक तो सीधे सीधे जो दक्षिण चीन सागर है और जो पूर्वी चीन सागर है उस पर सीधा अपना अधिकार जताता है कि ये हमारा है। और दूसरा यह है कि वो पूरा का पूरा जो एशिया पैसिफिक रीजन है, बार बार हम लोगों ने डेली ऑडियो लेक्चर में उसकी चर्चा भी की है कि इस पर लगातार अपने प्रभुत्व को फैलाने की कोशिश कर रहा है। जगह जगह नौसैनिक अड्डे बनाना, फिर रोड तैयार करना, दूसरे देशों को अपने अधिकार क्षेत्र में लेना, दादागिरी के साथ या आर्थिक मदद दे करके, जो भी हो, इस तरह से वो लगातार कोशिश कर रहा है। तो डेफिनेटली इससे सभी चिंतित हैं, यानी कि इससे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान ही चिंतित है, बल्कि दुनिया के दूसरे देश भी चिंतित है, लेकिन वो इतने छोटे देश हैं कि उनकी आवाज की कोई अहमियत नहीं है। तो अब ये चारों देश सक्रिय हुए हैं, और सक्रिय होने के बाद अब उन्होंने सीधे सीधे कह दिया है कि ये जो क्षेत्र है, हम इंश्योर करेंगे कि इस क्षेत्र का समावेशी विकास हो और सबके हित के लिए विकास हो, और यह जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र एक प्रकार से जो आपूर्ति श्रृंखला है, पूरे के पूरे विश्व में आपूर्ति श्रृंखला का साधन बने। आपूर्ति श्रृंखला का मतलब देखिए, अगर चीन का प्रभुत्व हो जाता है तो डेफिनेटली वो आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर सकता है, जो हमारे स्टीमर, जो जहाज पानी के जाते आते हैं, उनमें बाधा उत्पन्न हो सकती है। तो आपूर्ति श्रृंखला सुनिश्चित हो, पहला। दूसरा, उन्होंने जो बात कही है वो कही है, खासकर जिसे टीका राष्ट्रवाद शब्द का भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, कि ये जो वैक्सीन बन रही है, इस वैक्सीन में अब क्वाड ने अपना रोल डाला है। कैसे डाला है? कि भारत वैक्सीन बनाएगा, और जो भारत वैक्सीन बनाएगा उसके लिए बाकायदे अमेरिका और जो जापान है भारत को धन देंगे। आप जानते हैं कि वैक्सीन में बनाने की भारत की क्षमता विश्व में सबसे ज्यादा है। तो भारत वैक्सीन बनाएगा, जापान और अमेरिका उसे फाइनेंस करेंगे, और फिर जब वैक्सीन बन जाएगी तो जो ऑस्ट्रेलिया है वह दक्षिण पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र, याद रखिए दक्षिण पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र के दूर दराज जो क्षेत्र हैं वहां टीके की आपूर्ति करेगा। अब आप देखिए कि इसके जरिए आपको एक डिप्लोमेसी दिखाई दे रही होगी कि इस क्षेत्र के जो दूसरे राष्ट्र हैं, इस वैक्सीन डिप्लोमेसी के जरिए उनके साथ मित्रता स्थापित करना, उनकी मदद करना, उनका सहयोग लेना, इसका सेकेंड पॉइंट है। और जो तीसरा पॉइंट है दोस्तों, उसका संबंध जलवायु परिवर्तन से है, कि जो क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं दुनिया में, जिसको लेकर के पूरा विश्व चिंतित है, उसके लिए भी काम करना। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि अब जो क्वाड है वो अपनी नई भूमिका में आ गया है, जो बहुत ज्यादा मायने रखती है, और इससे डेफिनेटली जो भारत की ताकत है वह बढ़ेगी। क्योंकि अभी आप देखते हैं कि भारत को जो थ्रेट मिलती, चाहे वो सीमा पर हो या दूसरे जो चुनौतियां हैं, चीन के जरिए मिल रही है, और इससे जो एक शक्ति संतुलन स्थापित होना चाहिए और जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो समुद्री सुरक्षा इंश्योर होनी चाहिए, डेफिनेटली उसमें मदद मिलेगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इसे लगातार अपडेट करते रहना चाहिए। फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स के क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ऑनलाइन क्लासेस में हमारे दो स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है, इनके नाम है अशोक कुमार और रोहन सुखदेव, आप दोनों का स्वागत है। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इनमें से कुछ दोस्तों के नाम हैं रवि कुमार, श्वेता राज, सौरभ प्रताप, मोहम्मद इमरान खान मवाना उत्तर प्रदेश से, अभिनव कुमार गढ़वा झारखंड से, दीपक कुमार जमुई बिहार से, रवि दत्त, अंजलि सोनी, गौरव मेघवाल उदयपुर से, और पायल खत्री उदयपुर से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।